Fold palms, close eyes, and focus your internal eye on the lotus feet of Sri Radha Shyama Sundar. This 12 syllabus mantra, 12 akshar ka mantra, छोटे बच्चे 5 साल के बालक ध्रुव के द्वारा जपा गया और भगवान का साक्षात्कार सामने दर्शन किया। एक छोटा बच्चा भगवान को देख सकता है, पा सकता है, हम सबके लिए आश्वासन है। हम वी हैव ए होप दैट वी कैन आल्सो इन दिस लाइफ टाइम गेट द ब्लेसिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा। So, पहली में सो वेन वी चैंट दिस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जस्ट फोकस योर विजन एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री राधा श्याम सुंदर और वट एवर द ड्यूटी यू मेडिटेट फ्रॉम द लोटस फीट टू द फेस। एंड वेन वी चैंट द अनदर मंत्र इज फ्रॉम श्रीमद भागवतम। द फर्स्ट प्रेयर इन श्रीमद भागवतम इज बाय वन मदर, एक माता जी को पहला स्थान भागवत में प्रार्थना का दिया गया है। कुंती महारानी की प्रार्थना का ये श्लोक है। इस श्लोक को जब हम उच्चारण करें, द मेडिटेशन शुड बी भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर चढ़ के द्वारका के लिए रवाना होने को तैयार हैं। रथ को देखिए, भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर आरूढ़ हैं और कुंती महारानी पीछे से ये प्रार्थना के शब्द कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय। और श्री कृष्ण भगवान मुड़ के पीछे देखते हैं और गोविंदाय नमो नमः कहने तक कृष्ण रथ से नीचे उतरते हैं, आके मां कुंती के चरणों का स्पर्श करते हैं। तो ये मेडिटेशन इस श्लोक के ऊपर ध्यान देना है। और फिर पंचतत्व में हर एक का नाम लेते समय पंचतत्व का दर्शन कीजिए। तो आइए मेरे पीछे दोहराइए, प्लीज रिपीट आफ्टर मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा Krishna, Krishna, Hare Hare.
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama.
Hare Rama, Hare Rama.
Rama, Rama, Hare Hare.
Rama, Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. तो आप सबका स्वागत है बलराम देश इस्कान से श्री राधा श्याम सुंदर श्री राधा बैरनेश्वर मंदिर में। प्रतिदिन भगवत गीता के ऊपर सत्संग चल रहा है। आज विशेष एक वैष्णव आचार्य का आविर्भाव तिथि है। टुडे इज ए अपीयरेंस डे ऑफ वन ऑफ द पंचतत्व श्रीवास ठाकुर। टुडे इज वेरी स्पेशल डे, सो वी ग्लोरीफाई श्रीवास ठाकुर की महिमा श्रवण करेंगे और उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा, श्री कृष्ण के राधा कृष्ण के चरणों की भक्ति हमारे जीवन में हो, ऐसा भाव रखते हुए प्रार्थना करेंगे। चेतन महाप्रभु चार जगह पे सदा रहते हैं। एट फोर प्लेसेस महाप्रभु इज ऑलवेज प्रेजेंट। सचिर रंधन, सची माता के किचन में जब भी सची माता प्रसाद तैयार करेगी महाप्रभु आके खाते हैं। नित्यानंद नृतन, या नित्यानंद नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, वहां महाप्रभु होते हैं। प्रमाण वो दही चीरा फेस्टिवल पानी हट्टी में नित्यानंद के कीर्तन में महाप्रभु साक्षात आए थे और नित्यानंद प्रभु ऐसे महाप्रभु को खिला के सब कहते ये क्या कर रहा है, तो महाप्रभु साक्षात वहां ही पर्सनली अपीयर्ड देयर। और तीसरा है श्रीवास आंगन। श्रीवास आंगन में नित्य महाप्रभु निवास करते हैं। और चौथा क्या है, व्हाट इज द फोर्थ प्लेस? आपके दिल में, हाँ, वैद्य विद्या के दिल में सदा के लिए था, इट इज ग्रेट, हृदय में है, दैट्स गुड, डिवोटी शुड एस्पायर फॉर दैट। राघवेंद्र झोलन, वो पानी हट जाएंगे तो वहां राघवेंद्र आचार्य है, जिसको उसकी बहन बहुत सा पिकल्स और ड्राई चीजें बना के एक एक झोली में बनाती थी, वो रथ यात्रा में जब जाते थे ले जाते थे महाप्रभु के लिए, तो वहां महाप्रभु नित्य उस प्रसाद को रसास्वादन करते हैं, रहते हैं। तो श्रीनिवास आंगन इज वेरी स्पेशल प्लेस, हार्डली 200 मीटर फ्रॉम द योगपीठ। सची माता के घर से, निमाई पंडित चेतना महाप्रभु के घर से केवल 200 मीटर की दूरी पे बहुत सुंदर श्रीनिवास आंगन है, सॉरी श्रीवास आंगन है। श्रीवास और उनके तीन भाई श्री रामदास और दो और नाम क्या है, श्रीवास रामदास दो और भाई है, चार भाई महाप्रभु के प्रकट होने से पहले माया नवद्वीप में आके रहे थे। दे आर सीनियर टू महाप्रभु, महाप्रभु का प्रकट बाद में हुआ है। उस वक्त में नवद्वीप बहुत बड़ा वेद वेदांत के पढ़ने का स्थान था। इट वॉज ए बहुत स्कॉलरली पंडित उस वक्त नवद्वीप में रहते थे, लेकिन होता क्या था, केवल वाद विवाद डिबेट, कौन किसके जीतता है, कौन क्या करता है, लेकिन भक्ति नहीं थी, ओनली ड्राई स्पेक्यूलेशन, नो डिवोशन। तो श्रीवास पंडित और अद्वैत आचार्य दोनों बैठ के हरि कीर्तन करते थे और ये सोचते थे कि इन लोगों के वैदिक पठन पाठन और पढ़ना और पढ़ाना और वाद विवाद करना और कंपटीशन करना, इससे भक्ति नहीं हो सकती है। केवल भगवान ही आएगा तो भक्ति आग हो सकती है। इफ ओनली लॉर्ड कृष्ण कम्स देन द वैष्णव समाज कैन इंक्रीज। सो दोनों ने कहा कि कैसे भगवान को बुलाया जाए। सो दे वर देयर अर्ली, भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रकट्य से पहले रहे थे वहां। मालिनी श्रीवास पंडित जी के धर्मपत्नी सची माता की बहुत निकट की मित्र थी, और चैतन्य महाप्रभु के अवरभाव विश्वंभर का प्रकट्य क्या हुआ, मालिनी और श्रीवास बहुत गिफ्ट लेकर सची माता के वहां गए, और चैतन्य महाप्रभु अपने सेकंड मदर मानता था मालिनी को, श्रीवास की पत्नी को अपनी मां के समान मानता था। और नित्यानंद प्रभु तो इतना बड़ा था, महाप्रभु से बड़े हैं, लेकिन वो मालिनी को कहते थे मेरे को दूध पिलाओ। इतने बड़े थे, 25 साल की उम्र के हो तब भी मालिनी को जाके बोलते दूध पिलाओ, स्तनपान करते थे। ये महाप्रभु कहते क्या करते अब दूध, ये क्या कर रहे हो। लेकिन वो उस उम्र में भी उनको वो भाव था, मालिनी उनको अपने बेटे के समान मानती थी। तो श्रीवास पंडित रामदास, और दो नाम कहां से याद आएंगे, किसी को याद है दो और नाम अभी सन माई टंग, हरे कृष्ण, वो किताब पढ़ा है टेबल पे मेरे ले ले कोई, कर्ण क्या, कर्ण कीर्ति, कर्ण उसके पास है कर्ण। सो श्रीवास पंडित की पहली विशेषता, द फर्स्ट थिंग अबाउट श्रीवास पंडित, चेतन महाप्रभु गया से लौटने के बाद ट्रांसफॉर्म्ड कंप्लीटली, और शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में अद्वैत आचार्य श्रीवास पंडित उनके साथ मिले और कहा को अब कृष्ण भक्ति के अलावा और जीवन में कुछ नहीं करना है, तो कहां करेंगे संकीर्तन आंदोलन शुरू, श्रीवास के आंगन में। दे स्टार्टेड संकीर्तन फॉर वन फुल ईयर, एक साल तक रोज रात को बहुत इंटीमेट, बहुत निकट के एसोसिएट महाप्रभु के श्रीवास आंगन में सारी रात आनंद से कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे, और ये नृत्य और कीर्तन श्री कृष्ण की रासलीला से अभिन्न है। जो वृंदावन में कृष्ण रासलीला करता है और वो रासलीला श्री कृष्ण की गोपियों के संग में एक ब्रह्मा जी के दिन जितनी बड़ी हो जाती है, एक पूर्णमासी की रात, ये एक साल ऐसे ब्रह्मा के दिन जितना लंबा महाप्रभु ने कर दिया, और ये सारे परिकर प्रेम से आनंद का कीर्तन करते थे। और सुबह होती थी, सनराइज होने के समय इतनी पीड़ा उनको होती थी कि सौ सन सौ सन अगर डिसअपियर हो जाए तो इतना दुख नहीं होता था, इतना सन के अपियर होने से दुख होता था कि अरे 12 घंटे कीर्तन नहीं होगा, 12 घंटे के लिए अब हमारे को महाप्रभु के संग में कीर्तन करने का टाइम नहीं मिलेगा। सो दे वर सो इमर्स इन कीर्तन, देयर वाज कोई आदमी आ नहीं सकता था, दरवाजा बंद करके महाप्रभु कीर्तन करते थे। महाप्रभु एक बहुत सुंदर श्लोक चेतन चरितमृत में है, चिराद अदित्तम निजगुप्त वित्तम, चिराद अदित्तम बहुत समय तक नहीं दिया गया था, चिराद मीन्स फॉर लॉन्ग टाइम, अदित्तम वॉज नॉट गिवन, क्या नहीं दिया गया था, निजगुप्त वित्तम, निज मीन्स पर्सनल, गुप्त मीन्स मोस्ट सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल, वित्तम मीन्स धन, अपना गुप्त धन जो बहुत समय तक नहीं दिया गया था। क्या है गुप्त धन, व्हाट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल धन, क्या है गुप्त धन, क्या गुप्त वित्त क्या है, स्वप्रेम, स्वप्रेम मीन्स कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम जो बहुत समय तक नहीं दिया गया था। किस रूप में कृष्ण प्रेम दिया जाए, नाम अमृतम इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर ऑफ होली नेम। श्री चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम को जो बहुत समय तक नहीं दिया गया था, जो भगवान का अपना निज गुप्त वित्त है,
वित्त, वित्त का मतलब धन है, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये गौलोक का प्रेम धन है, कृष्ण का प्रेम धन है। ये कौन ले आया यहां? श्री चैतन्य महाप्रभु। अति उदार है गोरा, बहुत उदार है गोरा, अति उदार, इतना उदार है गौरंग महाप्रभु। पामर तामर कैसा कोई नीच है, योग्य है अयोग्य है ये नहीं देखा, एलिजिबल है नहीं एलिजिबल इसको नहीं देखा, सबको दे दिया। उस गौरंग महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम को, जो अपना निज धन है, उसको लाके सबको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको दिया। लेकिन कृष्ण प्रेम कृष्ण के पास नहीं है, कृष्ण डोंट हैव कृष्ण प्रेम, कृष्ण डोंट हैव कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम इज विथ कृष्ण डिवोटी, भगवान के भक्तों के पास कृष्ण प्रेम होता है, भगवान के पास कृष्ण प्रेम नहीं है, भगवान के भक्तों के पास है। कृष्ण प्रेम इज द सोल प्रॉपर्टी ऑफ डिवोटीज ऑफ श्री कृष्ण। इसलिए कृष्ण प्रेम देने का अधिकार भक्तों को है। अगर भगवान स्वयं प्रेम दे तो किसी को दे किसी को नहीं दे तो पक्षपात हो जाएगा ना, पार्शलिटी हो जाएगी। देयरफॉर कृष्ण प्रेम कैन ओनली बी हैड फ्रॉम डिवोटी। इसलिए भक्ति या कृष्ण प्रेम का जन्म कहां होता है, ये चैतन्य चरितमृत में दूसरा बहुत सुंदर श्लोक है, भक्ति जन्म हैते भक्त संगे। भक्ति का जन्म भक्त के संग में होता है, भक्ति का जन्म ही भक्त के संग में होता है। द डिवोशन द लविंग डिवोशनल सर्विस द लविंग डिवोशनल सर्विस एट द लोअर फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण ओनली टेक बर्थ इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्ति जन्म हैते भक्त संगे, भक्त के संग में भक्ति का जन्म होता है, और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे। भक्ति मिल जाए फिर भी भक्त संग मुख्य अंग। इवन भगवान मिल जाए फिर भी भक्त का संग मुख्य अंग है, क्योंकि भक्त के पास भगवान की भक्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण को जब भक्ति अपना प्रेम देने का मन में संकल्प किया तो कृष्ण ने देखा मेरे पास तो कृष्ण प्रेम नहीं है, कृष्ण प्रेम तो मेरे भक्तों के पास है। अब कृष्ण स्वयं अगर कृष्ण प्रेम बांटने आए तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, कृष्ण इज पूर्ण पुरुषोत्तम, वो तो सर्वकला संपन्न है, तो वो प्रेम भी तो संपूर्ण पूरा लाएगा ना, पार्शल प्रेम तो नहीं ला सकता। पार्शल प्रेम तो भगवान देखा कि किसके पास पूर्ण प्रेम है, 100% कृष्ण प्रेम किसके पास है। तो कभी हम इसको समझाने के लिए कहते हैं कि मानो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए, किसी के आगे ऐसे दिखाया जाए तो कृष्ण प्रेम का परसेंटेज बता दे। तो भगवान ऐसे करके देखा तो नारद 70% है, शंकर जी 75% है, और यहां उद्धव जी 85% है। 100% तो कहीं नहीं है, किसका ले जाऊं। देन ओनली ही फाउंड 1% विद 100% एंड दैट वाज श्रीमती राधा रानी। तो 100% कृष्ण प्रेम घनीभूत केवल राधा रानी के पास है। अब कौन अपना धन देगा? हरे कृष्ण मंत्र राधार तंत्र, ये तो राधा रानी का तंत्र है जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में रखती, ये धन तो उसका है। अब कौन अपना धन किसी को देगा? कोई देगा क्या? नहीं देगा ना। लेकिन कृष्ण बहुत एक्सपर्ट है, थीफ उसका नाम पुराना चोर है, चोरी करने में बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन एक महात्मा कहा करता था कृष्ण को माखन चोर कहते हैं, लेकिन आपको कहने का अधिकार नहीं है। क्यों आपको अधिकार नहीं है? कि आपके घर कभी आया था? आपके घर कभी चोरा नहीं आया क्या? माखन नहीं आया ना, तो आप तो नहीं कह सकते हैं ना। किसके घर में माखन चुराने कृष्ण जाता था? जो बहुत प्रेम से माखन बनाती थी कृष्ण के लिए और फिर जाती थी पनघट पे, बोलती कन्हैया बहुत सुंदर माखन बनाया है, हमारे घर खाने आना। और जब खाने आता था तब बोलता था हमारे घर में चोरी करने क्यों आए हो। ये बहुत प्रेम से बुलाती थी उनको। तो चोरी करना बहुत एक्सपर्ट है, और चोरी के साथ नवनित तस्कर, तस्कर का अर्थ क्या है हिंदी में, तस्कर मतलब स्मगलर, नवनीत का मतलब माखन, माखन की स्मगलिंग करता है, इधर से उधर पहुंचा देता है। तो कृष्ण प्रेम ने, कृष्ण ने राधा रानी के हृदय से प्रेम को चुराने का संकल्प किया, लेकिन कौन अपना धन किसी को चोरी करने देगा? कोई चोरी करने आए तो आप क्या करोगे, देख लोगे उसको, पकड़ोगे ना? तो अगर मानो कोई पकड़ेगा तो दूर से कौन दिखाई देगा, जो पकड़ा हुआ है वही दिखाई देगा ना। तो बाहर से राधा रानी दिखाई देती है, पकड़ लिया कि कृष्ण कहां धन लेके जा रहा है, तो साथ जाऊंगा, पकड़ा हुआ है उसको। सो बोथ बिकम वन इन द फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण प्लस भक्ति नैपुण्य, कृष्ण में जोड़ करेंगे जब प्लस करेंगे नैपुण्य भक्ति, परिपूर्ण भक्ति, तब चैतन्य महाप्रभु बनता है। चैतन्य महाप्रभु की इक्वेशन ये, कृष्ण प्लस भक्ति नैपुण्य परिपूर्ण कृष्ण प्रेम, तब चैतन्य महाप्रभु बनता है। अब चोरी का माल कोई ले आएगा तो छुपके ही तो उसको पहले भी लूटना होगा, तो छुपके लूटेगा ना। तो श्रीवास आंगन उनका सीक्रेट जगह थी, जहां उन्होंने जो प्रेम धन लायक थे उनको स्वयं ने लूटा। दे रिलिश दी टेस्ट ऑफ दी नेक्टर ऑफ दी होली नेम देम सेल्फ। ये कुछ बहुत विशेष परिकर थे, क्लोज एसोसिएट ऑफ महाप्रभु। वो केवल इस हरिनाम संकीर्तन के धन को दरवाजे दरिया खिड़कियां सब बंद करके लूटते थे, और जब यहां तक भर गए तब वितरण करने का सोचा कि अब बांटना है। लेकिन बांटना है, चोरी का माल बांटना है ना, तो चोरी का माल बांटा कहां महाप्रभु ने? एक प्रयागराज में और एक बनारस में, काशी में। काशी में एजेंसी सनातन गोस्वामी को दी और प्रयागराज में रूप गोस्वामी को माल दिया, बोला आपको रीपैक करो जाके वृंदावन में, और वृंदावन में रीपैक होके फिर वापस गया बंगाल में, और फिर जाके वहां खुलक प्रचार हुआ। सो दिस इज, ये इस तरीके से चेतन ये प्रचार हुआ है सारा महाप्रभु की मिशन का। कृष्ण प्रेम आया कहां? नवदीप में। लेकिन वहां से दिया महाप्रभु ने मिडिल में कहीं, भेजा वृंदावन में, वहां से गोस्वामी ने रीपैक किया, तैयार किया, और फिर ये सारा वापस बंगाल में गया, ओडिशा और बिहार में गया, और पूरे विश्व में प्रचारित हुआ। तो श्रीवास आंगन वो जगह है जहां कृष्ण प्रेम स्वयं महाप्रभु ने अपने भक्तों के संग में लूटा, आनंद में मगन होकर लूटा। लेकिन बाहर जितने ब्राह्मण पंडित रहते थे वो कहते थे, अरे ये छुपके करते क्या है अंदर, ये छुपके क्या करते हैं अंदर, किसी को आने नहीं देते हैं, ये जरूर कोई गलत काम करते होंगे। तो श्रीवास पंडित को बदनाम करने के लिए एक ब्राह्मण गोपाल चप्पल, काली दुर्गा की पूजा की सारी सामग्री तांत्रिक श्रीवास पंडित के घर के बाहर रख के रात को चला गया। सुबह श्रीवास पंडित उठा, सामग्री को देखा, और सब बड़े आदमी को बुलाया, नवदीप के ब्राह्मणों को बोला, देखो मैं घर में दुर्गा की पूजा करता हूं, और लोग वैसे कहते हैं कि हम अंदर में क्या करते हैं, देखो मेरा ये हाल है, मैं तो दुर्गा की तांत्रिक पूजा करता हूं। अब सब पंडित कहते हैं, महाराज नहीं नहीं, आपके घर में तो भगवान के नाम का कीर्तन होता है। बोला नहीं नहीं, देखो ना ये आपके सामने पड़ा है। तो श्रीवास पंडित ने किसी को कंप्लेन नहीं किया कि किसी और ने यहां डाला है। हमारा तो ये है कि प्रसाद में कोई एक प्लेट हमसे पहले लेते तो उसको कहते, तुम कहां बीच में आ गया, हमारा नंबर कैसे लेते हो, या ये तो मेरा नाम ले रहा है, मैं तो यहां था ही नहीं। लेकिन सही बात, पंडित ही डिड नॉट रिटेलिएट, किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया कोई करके गया। नहीं नहीं, देखो ना आप सब लोग, देखो मैं ढोंग करता हूं, मैं दिखावा करता हूं भगवान के नाम के प्रचार का, मैं तो तांत्रिक हूं। लेकिन ब्राह्मण जो समझदार थे, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप पंडित जी हम जानते हैं, आपका पूरे कुल को जानते हैं, रामदास को जानते हैं, निधि और श्रीपति ये दो और भाई है, श्री निधि श्रीपति और राम ये चार भाई है ये श्रीवास पंडित जी के। ब्राह्मणों ने वो जगह साफ की, लेकिन दो दिन के बाद गोपाल चप्पल को लेप्रोसी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। और एक दिन महाप्रभु नहाने के लिए आ रहे थे गंगा से, उसने जाके प्रार्थना की, महाप्रभु मेरा उद्धार कीजिए। महाप्रभु क्रोध आ गया, तुम वैष्णव अपराधी हो, तुमने श्रीवास पंडित के ऊपर आलोचना करके आरोप लगाया है, उसके घर के सामने तुम चंडी की पूजा का सामान रखा है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। महाप्रभु को बहुत क्रोध आया इस बात, लेकिन श्रीवास पंडित ने इसका बिल्कुल नोटिस नहीं दिया। दोबारा चेतना महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वापस नवदीप आए, तब फिर गोपाल चपल गया, इस बार जाके गिरा के मैं महाप्रभु आपका चरणों में पड़ता हूं, कृपा करके मेरे को अपने शरण में लीजिए। तब महाप्रभु जाओ श्रीवास पंडित से जाके क्षमा मांगो, उसके तुमने अपराध किया है। और ये श्रीवास पंडित के पास जाता है, श्रीवास पंडित तो कहता है आइए आइए, आप तो महान भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, कोई अपराध मेरा नहीं किया है आपने, मेरी तरफ से आपको क्षमा है। तब उसका रोग समाप्त हुआ, उसके ऊपर श्रीवास पंडित ने अपनी तरफ से आरोप तब भी नहीं लगाए, उसको मुक्त कर दिया। और ये तो प्रसिद्ध कहानी है कि रात को कीर्तन के बीच में श्रीवास का बेटा प्राण त्याग दिए, घर में स्त्रियां रोने लगी, श्रीवास अंदर जाके बोला कोई नहीं रोएगी, महाप्रभु के कीर्तन में भंग पड़ रहा है, उसके आनंद को नहीं खराब करो। और सब चुप हो गए, लेकिन महाप्रभु कीर्तन से बोला क्या बात है आज कुछ चुप लगा हुआ है, क्या हो क्या गया? तो किसी ने कहा ऐसे रात श्रीवास पंडित जी के बेटे का देहांत हो गया। बोले कहां है, हमको बताया क्यों नहीं, कहां है, किधर है? और बेटे बोला उठो उठो तुम सो क्यों गए हो? महाप्रभु कहा तुम उठो सो क्यों गए हो? और बेटा उठ के बैठ गया। तो महाप्रभु एक दिन श्रीवास पंडित को बोल के कहते हैं पंडित जी आप गृहस्थी हो, आपका परिवार है, आपको कुछ काम काज करना चाहिए। श्रीवास पंडित कहता है जो मेरे भाग्य में है वो मेरे को मिलेगा, मेरा जीवन केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करना है, मैंने तो आपको मेरा जीवन समर्पण कर दिया है, अब मैं और क्या काम करूं, कुछ काम मैं नहीं करूंगा और ब्राह्मण को कोई काम करने की जरूरत भी नहीं। महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, एक बहुत सुंदर श्लोक कहा और श्लोक में कहा कि श्रीवास आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लक्ष्मी कभी हो सकती है कि कंगाल हो जाए, लक्ष्मी के पास हो सकता है कभी धन ना हो, लेकिन तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, ये मेरा तेरे को वरदान, इतना तुम्हारे को विश्वास है। और श्रील प्रभुपाद एक भावार्थ में लिखते हैं श्रीमद भागवत के दसम स्कंद के दूसरे अध्याय में, जहां देवता आते हैं भगवान श्री कृष्ण से के जन्म से पहले प्रार्थना करने, एक जगह श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखा है कि हमारी संस्था इस्कान में 100 सैकड़ों मीन्स हंड्रेड्स फुल टाइम डिवोटीज हैं, उनका कोई फिक्स काम नहीं है, फिक्स जॉब नहीं है, फिक्स इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी दे आर लिविंग ऑपुलेंटली, बहुत ही सुखपूर्वक रह रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। एक बार जो भगवान को अपना जीवन समर्पित कर देता है उसके पास कभी कोई कमी रहे ये संभव नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। एक बहुत सुंदर पर्पट श्रीमद भगवद गीता के 18वें अध्याय का है, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं जो कृष्ण भक्त एक बार अपने जीवन को पूर्ण रूप से अर्पण कर देता है, वन बिकम्स फुल्ली डेडिकेटेड डिवोटी,
Krishna becomes his intimate friend. Krishna becomes his intimate friend. And he look after his friend's comfort. Bhagavan Sri Krishna uska bahut ghanishth mitra ho jata hai. Aur apne mitra ki sab suvidhaon ki chinta Krishna karta hai. He gives himself to his friend. Krishna apne bhakt ko apne aap ko de deta hai. Ye 18th adhyay ka exercise. You want really Prabhupada ke shabd sunna chahte hain? How he wrote these words? Kitna sundar aur direct Prabhupada ki realization hai ye. 1850. For one who acts in Krishna consciousness, Lord Krishna becomes the most intimate friend. He always looks after his friend's comfort and he gives himself to his friend who is so devotedly engaged working 24 hours a day to please the Lord. Kitna intimate realization hai. Krishna becomes his intimate friend. Krishna itna ghanishth mitra ho jayega, apne aap ko us bhakt ke hawale kar dega. Uske sab sukh suvidha ko Bhagwan dekhta hai. This is the Prabhupada ki realization hai, ye personal. Ki how he was taken care by Krishna. All alone, 70-year-old person, left all the company of friends and associates and devotees, or ek aisi country mein jisko kisi ko jante nahi hai, wahan ja gaye hai. And how Krishna was taking care of him, jaise maa bacche ka dhyan rakhti hai, usse zyada nikat se Krishna was caring for him. This is Prabhupada's personal realization. This is a big, great hope. Ye Mahaprabhu ka Srivas Pandit ko ye kehna, aur Prabhupada ka ye purport likhna, ye bhaktun ke liye bahut aashwasan hai. It's a great hope for the devotees if they dedicate their life for the purpose of preaching the mission of Chaitanya Mahaprabhu, there will be no scarcity of anything. Kisi cheez ki kami nahi hogi. Aur ek din Prabhupada ji Vrindavan mein baithe the, Bhagavat parvachan dete hue keh rahe the, main 10 saal mein 40 रुपये से कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान की आरंभ किया. आज पूरे विश्व में 40 अरब से ज्यादा कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान की प्रॉपर्टीज है. ऐसा कोई बिजनेसमैन है जो इतने समय में इतना धन अर्जन कर सकता है? पूछ रहे थे, इज देयर एनी बिजनेसमैन हु कैन मेक आउट ऑफ 40 रुपीज इन 10 इयर्स 40 मिलियंस डॉलर्स? और फिर कहा, कृष्ण अपने भक्त को सब कुछ देने को तैयार है अगर वो उसको संभाल सकता है तो. जैसे छोटा बच्चा आपका है तो 10 रुपया पॉकेट मनी देते हो, लेकिन जब बच्चा बड़ा होकर आपके साथ काम करने लगता है और आपके सारे काम को संभालता है, तब तो सारा बैंक में साइनर भी उसको बना देते हो, सारा प्रॉपर्टी और बिजनेस उसके हवाले कर देते हो कि नहीं कर देते हो? सो वन व्हेन सम बिकम्स ए फेथफुल सन ऑफ श्री कृष्ण, देन कृष्ण गिव्स हिम अनलिमिटेड. कितना देता है कृष्ण? कृष्ण कितना देता है? 1000 हाथ है देने के लिए, तुम्हारे पास 2 हाथ है, कितना ले सकते हो? सहस्र बाहु, 1000 बाजू है उसके, तो कितना देगा आप, ले कितना सकते हो? और फिर प्रभुपाद ने कहा, लक्ष प्लेस ऑफ लक्ष्मी is at the lotus feet of Vaishnava. Sadhu Brahman ke charanon ke upar Lakshmi ka sthan hai. Aur phir Prabhupada ne kaha, therefore mandir mein aane wale hamare guest aur yatri, unko aap Krishna bhakti do. Unke hirday ko dekho कि उसमें कृष्ण प्रेम का अभाव है, उसको कृष्ण प्रेम दो. उसकी जेब को मत देखो कि तुम्हें पैसा कितना देगा. He said like this, look into the heart of a visitor, not in the pocket. पैसा लक्ष्मी ब्राह्मण के चरणों के ऊपर अपने आप आती है. इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रीचिंग. प्रचार करोगे तो ये बाय प्रोडक्ट अपने आप आएगा.
इसको अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है, इसको ले जाने के लिए, लेने के लिए कम ऑटोमेटिकल। एक ये भी बहुत सुंदर प्रभुपाद का हिस्टोरिकल लेटर है, ये इस बात के ऊपर चर्चा चल रही है कि श्रीवास पंडित को महाप्रभु ने कहा लक्ष्मी तो गरीब हो सकती है लेकिन श्रीवास तुम्हारे पास कभी अन्न की कमी नहीं होगी, अन्न तुम्हारे पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इस बात के ऊपर महा ये रियलाइजेशन प्रभुपाद की है, एक लेटर उन्होंने डिक्टेट कराया था एक बार सब टेम्पल प्रेसिडेंट को, आप में से किसी ने कभी पढ़ा हो तो याद होगा, लिखा था सब टेम्पल प्रेसिडेंट को कि हमारे मंदिर में हर वक्त 25 से 50 आदमियों का प्रसाद तैयार होना चाहिए, और प्रसाद के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी थी राइस दाल सब्जी पूरी हलवा खीर, फुल डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद लिखा था जैसे ये एग्जॉस्ट हो दूसरी बैच प्रसाद की तैयार होनी चाहिए, आने वाला हर जेंटलमैन भगवान का दर्शन करके उसको बिठा के प्रसाद खिलाओ, और फिर लास्ट लाइन ये थी किचन इज गवर्न बाय राधा रानी एंड राधा रानी हैज थाउजेंड्स लक्ष्मी एट हर सर्विस। किचन की मालिक राधा रानी है और राधा रानी की लाखों लक्ष्मी सेवा करती है, आप मत समझो कि आप खिला रहे हो, सिंपली आप ऐसे करके देखो। और पुराने भक्तों को अगर आप पूछेंगे तो इस प्रभुपाद एक बार पिट्सबर्ग एयरपोर्ट से जा रहे थे न्यू वृंदावन, और भक्तों को कहा आई स्प्रेड दिस मूवमेंट बाय टू थिंग्स ओनली, मैंने इस कान का प्रचार केवल दो चीजों के द्वारा किया, पहली कीर्तन प्रेम से मधुर कीर्तन किया और दूसरा प्रसाद वितरण किया, ओनली बाय कीर्तन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद आई स्प्रेड दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। तो ये दो काम कीर्तन और प्रसाद ये महाप्रभु की देन है। इसी श्रीवास आंगन में एक साल तक जब कीर्तन होता था उस पूरे एक साल के लिए महाप्रभु ने अपने इन विशेष भक्तों के लिए सर्दी की मौसम में उनको भूख लगी एक आम का सीड बोया, सबके सामने आम का पेड़ तैयार हुआ और आम लगे, और आम भी ऐसे न छिलका था उसमें और न उसमें बीज था, और एक इतना बड़ा आम था कि एक आदमी खाए तो दूसरा कुछ खाने की जरूरत नहीं, और एक साल तक जितने रोज आम चाहिए उतने वो पेड़ आम देता था। तो जो कीर्तन करते थे उनको महाप्रभु प्रसाद आम का निश्चित रूप से उस पेड़ से खिलाया करते थे। लेकिन ये श्रीवास आंगन वो जगह है जहां काजी ने चांद काजी ने मृदंग को तोड़ा था, इसी आंगन में चांद काजी ने खोल भंग मृदंग को तोड़ा था, मृदंग को यहां टूटा था आकर, और महाप्रभु उसको बहुत सीरियसली लिया था, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहली बार महाप्रभु चेतना ने शुरू की थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट चांद काजी, सब लोग डरे डर रहे थे, चांद काजी ने तो ऐलान किया, उसने घोषणा कर दी आज के बाद कोई मृदंग बजा के कीर्तन करेगा उसको दंडित किया जाएगा, सब डर गए। लेकिन श्रीवास पंडित हंस रहा था, बोले मूर्ख है कैसी बात करता है, कौन भगवान स्वयं आ गए तो अब उसका कीर्तन कौन बंद कर सकता है। श्रीवास पंडित वॉज ऑलवेज वेरी वेरी इंटीमेटली रिलेटेड टू चैतन्य महाप्रभु, जीव तत्व है, पांच तत्वों में जीव तत्व है, नारद का स्वरूप है, लेकिन प्रचार की दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित की हर बात को मानते थे। एक और विशेष लीला श्रीवास आंगन में हुई थी, उसको कहते हैं सात पहरिया
महाप्रकाश लीला। सात पैर आठ पैर दिन रात में होता है, एक पैर तीन घंटे का होता है, थ्री अवर्स इन वन पैर, सो सेवन सात पैर का मतलब 21 आवर्स महाप्रभु स्पेशली महाप्रकाश लीला श्रीवास आंगन में। एक बहुत सुंदर विष्णु का सिंहासन था, विष्णु के सिंहासन पे सालंगराम रखे हुए थे। एक दिन महाप्रभु अपने भाव में ऐसे आए, सालंगराम शिला को उठा के अपनी गोद में रखा और ऊपर बैठ गए विष्णु सिंहासन पे, बोला मेरा अभिषेक करो। सब भक्त बहुत आनंद में हो गए। पहले वो कहते थे आप भगवान है, तो बोलते थे नहीं तुम ठीक नहीं बोल रहे, भागो यहां से मैं भक्त हूं। लेकिन आज महाप्रभु विशेष एक भाव में वहां सिंहासन के ऊपर बैठे, एकदम सब गए पानी भरने के लिए, गंगा से पानी आया, महाप्रभु का अभिषेक हुआ। फिर महाप्रभु ने एक एक भक्त को बुलाया, एक एक भक्त को बुलाया, पर्सनली एक एक भक्त को बुलाया, और उसके साथ महाप्रभु ने जीवन में जो जो अंतरंग लीला की थी उसका स्वयं ने महाप्रकाश लीला में दर्शन किया। ये तो दो दिन कम से कम महाप्रकाश लीला सुनने जैसी लीला है। हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि जब तुमको 24 मार्केट जगहों में कोड़े मार रहे थे तो मैं तो सुदर्शन चक्कर लेके उनको मारने के लिए आया, लेकिन तुम इतनी उनसे प्रेम करके, उनसे तुम्हारा इतना प्रेम था, उनकी रक्षा के लिए इतनी प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इनको मारो मत, ये बेचारे जानते नहीं है, तुम्हारी रक्षा मेरे सुदर्शन चक्कर के मारने से ज्यादा तीव्र थी, तो मैं नहीं मार सका, मैं क्या करूं, मैं अपने शरीर से तेरी पीठ को ढक दिया, कोड़े तुमको नहीं लगे। और महाप्रभु ने अपनी ओतरी हटा के उस वक्त महाप्रकाश लीला में हरिदास ठाकुर को दिखाया कि ये देखो वो कोड़े मेरे पीठ के ऊपर निशान। ऐसे हर एक भक्त को उसके संग जो महाप्रभु ने विशेष विशेष, तो श्रीवास पंडित के संग में भी, सबके संग में ये बहुत अति मधुर लीलाएं जो की है, ये रसास्वादन करने जैसी है। तो श्रीवास पंडित का आज आविर्भाव दिन है। अद्वैत आचार्य और श्रीवास पंडित जी दोनों कंटेम्पोररी थे, उन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया कर दिया था। इनकी समाधि 64 समाधि, 64 महंत की समाधि वृंदावन में, वहां इनकी समाधि का उल्लेख मिलता है। तो ये श्रीवास पंडित के, किसी और को कुछ ऐड करना है, एनीबडी हैज एनीथिंग स्पेशल अबाउट श्रीवास पंडित? बहुत कुछ लीलाएं है अभी मुझे, देयर मे बी सो मेनी मोर। माँ चैतन्य 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 भागवत में श्रीवास पंडित की बहुत अद्भुत लीलाओं का वर्णन मिलेगा, लेकिन अभी भी श्रीवास पंडित में जो भाग्यशाली गए हैं वहां कीर्तन करके जो आनंद का अनुभव करते हैं वो दुनिया में और कहीं नहीं होगा। कभी जाके श्रीवास आंगन में बैठ के आधा घंटा कीर्तन करें, उस कीर्तन का आनंद दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। अभी महाप्रभु की कृपा और कीर्तन वहां मानो नित्य हो रहा है, जैसे वृंदावन में रासलीला रोज हो रही है आज भी, ऐसे महाप्रभु का कीर्तन आज भी वहां हो रहा है। लेकिन उसको सुनने के लिए भक्त का हृदय ऐसा होना चाहिए कि उसको सुन सके, वो हृदय ऐसा पवित्र जिसका होता है वो उसको आज भी सुन सकता है। तो श्रीवास पंडित के चरणों में हम सब आज प्रार्थना करते हैं कि महाप्रभु के वो बहुत निकट के परिकर और पार्षद थे, वो अपनी कृपा और दिव्य हम सबके ऊपर करें कि इस जीवन में चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सके इस जीवन में। ऐसी प्रार्थना हम सबको श्रीवास पंडित के चरणों में आज करनी चाहिए। ये भाव के साथ श्रीवास पंडित की महिमा को यहां विराम देते हैं। श्रीवास पंडित महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, जब श्रीवास कहते हैं उसके बाद आदि गौर भक्तवृंद, जब कहते हैं हम कहते हैं मुख से, तब हमको उन गौर भक्तों को जिन्होंने हमको भक्ति में लगाया उनका आपके हृदय के ऊपर शक्ल तस्वीर आनी चाहिए। श्रीवास आदि गौर भक्त, आदि मीन्स और गौर भक्त, जो गौरंग महाप्रभु के भक्त है, तो कौन से गौर भक्त है जिन्होंने आपको भक्ति में लगाया, वो 3, 4, 5, 6 नाम आपके दिमाग में एकदम आने चाहिए। प्रभुपाद से, गुरुजी महाराज, गुरुजन से और भक्त जिनके जिनके संग से हमारे को इस भक्ति का रंग लगा है, उनका हृदय में थोड़ा सा दर्शन होना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। ये नित्य नेम है, तो ये उसका पार्ट होना चाहिए। तो आइए फिर, कल जहां भगवद गीता को रखा था, आज अभी भगवद गीता को जहां से शुरू करते हैं। किसी को कुछ और श्रीवास पंडित के जीवनी की कोई किसी को याद हो, विशेष कथा? पांच तत्वों में केवल एक गदाधर सन्यासी था, क्षेत्र सन्यासी, केवल गदाधर पंडित के क्षेत्र सन्यासी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन शादी किया और फिर सन्यास लिया, और नित्यानंद प्रभु सन्यास लिया और फिर शादी किया। बड़ा डंडा ही महाप्रभु स्वयं ने तोड़ दिया, नित्यानंद प्रभु, उन्हें नित्यानंद ने महाप्रभु का डंडा तोड़ दिया। और श्रीवास भी ग्रस्त आश्रम में रहे हैं, तो ऐसे दिखने में ऐसे लगता है कि महाप्रभु के कृपा पात्र बहुत सारे ग्रस्त भक्त भी, पांच तत्वों में चारों ने ग्रस्त आश्रम का आचरण किया है, उसमें श्रीवास भी एक बहुत बड़ा ग्रस्त होकर महान भक्त की उपमुवन कोटि का भक्त है। वैसे नारद ग्रस्त नहीं है, नारद तो अकेला है, लेकिन ये नारद यहां जब महाप्रभु की लीला में आया है तो एक सदग्रस्ती के रूप में आया है। ये आश्चर्य लगता है कि महाप्रभु के भक्तों में आपको दोनों वर्ग मिलेंगे, विशेष रूप से दोनों वर्ग मिलेंगे। तो कल जिस बात की चर्चा चल रही थी कि भागवत धर्म, भगवत गीता, भागवत धर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच का है, सन्यासी और गृहस्थी दोनों के बीच का है, दोनों भगवान की प्राप्ति करने के अधिकारी है, ये इतना सरल सा रास्ता है। चैतन्य महाप्रभु भक्ति को लाए थे, भक्ति आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु का, और सबके लिए है, सबके लिए है। तो 15 मिनट और हम सत्संग कर सकते हैं आज, हाँ, कल के टाइम तुम्हारे रेगुलर टाइम में अभी हमारे पास 15 मिनट है। कल हमने 12वें अध्याय के पहले श्लोक के ऊपर चर्चा की थी, जो अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन प्रश्न क्या पूछता है भगवान श्री कृष्ण से 12वें अध्याय में? एक पक्ष है श्री कृष्ण जैसे आप मेरे सामने खड़े हो, वासुदेव कृष्ण आप श्याम सुंदर जैसे मेरे सामने खड़े हो, इसकी नित्य सब जगह सब समय उपासना करें ये श्रेष्ठ है, या अथवा जो अक्षर अव्यक्त ब्रह्म निराकार है जिसको रूप नहीं है उसकी उपासना, इन दोनों में योग वित्तमह कौन सा है? योग वित्तमह का अर्थ कल बताया था, योग वित्त, योग वितर, योग वित्तमह, योग वित्तमह सुपरलेटिव डिग्री है, कि इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सी उपासना है, यह अर्जुन का प्रश्न है। ये डायरेक्ट कृष्ण से अर्जुन प्रश्न पूछता है कि आपकी उपासना जैसे मैं कर रहा हूं, यह अर्जुन का अपना संदेह है, इट इज डाउट ऑफ अर्जुन हिमसेल्फ। मैं कृष्ण आपका भक्त हूं जैसे आप सामने खड़े हो, आपके विश्व रूप को देख के मैं भयभीत हो गया, आपके विष्णु रूप को भी मैंने देखा, लेकिन मेरी आसक्ति, मेरा प्रेम, मेरा मन आवेश केवल आपके इस वसुदेव श्री कृष्ण के रूप में है।
अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने तो विश्व रूप ही दुखाया, इसके भी बहुत से उपासक हैं जिसे निराकारवादी विशेष रूप से विश्व रूप की उपासना की बात करते। शंकर भाष्य में विश्व रूप के विषय में लिखा हुआ है और रामानुज संप्रदाय में विष्णु रूप के विषय में लिखा है कि 11वें अध्याय में भगवान के विष्णु रूप की उपासना की बात की है और विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव श्री कृष्ण श्याम सुंदर की उपासना के विषय में अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रश्न को भिन्न संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय, डिफरेंट फॉलोअर्स डिफरेंट दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अर्जुन की दृष्टि, हम अर्जुन की दृष्टि से देखना चाहिए। गीता का फर्स्ट रिसीव करने वाला अर्जुन है हमारे लिए। नई संप्रदाय भगवान ने अर्जुन से शुरू किए। ये चौथे अध्याय में बहुत अद्भुत एक भगवान शब्द कह रहे हैं। चौथा अध्याय शुरू को होता है श्री भगवान वाच इमं वस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। इमं इमं अभी जो भगवान कहते हैं, इमं मतलब जो अभी मैंने आपको निष्काम कर्म योग की बात बताई है ना तीसरे अध्याय में, निष्काम कर्म योग भक्ति से थोड़ा सा पहले का स्टेज है और प्रभुपाद कभी कभी निष्काम कर्म योग और भक्ति को इंटरचेंजेबल भी बोलते हैं। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। अव्ययम का अर्थ क्या होता है? अव्यय। अव्यय का मतलब है व्यय कहते हैं खर्चे को, कितना व्यय हो गया, खर्चा कितना हो गया। अव्यय का मतलब कितना भी खर्चा करो खत्म करना हो, इनएग्जास्टेबल। अव्यय का मतलब है इनएग्जास्टेबल, कभी खत्म नहीं होने वाला हो, नाश नहीं होने वाला हो। और क्या? इमं विवस्वते योगम, विवस्वते मतलब विवस्वान को, जो इस वक्त सूर्य देव है विवस्वान, इस विवस्वान को मैंने अविनाशी योग का ज्ञान दिया। विवस्वान मनवे प्राहु, विवस्वान ने मनु को दिया और इस मनु का नाम है विवस्वत मनु। ये विवस्वत मनु है जो विवस्वान का बेटा है। मनुरिक्षवाक्वे अब्रवीता, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, मनु से हमारा नाम मानव हो गया। और इक्ष्वाकु ने इस धरती के ऊपर अयोध्या की स्थापना की और जहां ये गीता का ज्ञान प्रचलित था। और फिर दूसरे श्लोक में प्रभु कृष्ण भगवान कहते एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुहो। ऐसे परंपरा से राज ऋषियों ने इसको जाना, यहां तक तो ठीक है। फिर एकदम श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं सुन लीजिए। सकाले नेह माता योगो नष्ट परम तप। महान काल के प्रभाव से वो योग नष्ट हो गया। जो ऐसे देख रहा है, अभी बोला आपने अव्यय योग, अविनाशी योग है, और दूसरे श्लोक में कहते हैं योग नष्ट हो गया। ये कंट्राडिक्टरी बातें हैं ना दोनों। एक श्लोक पहले आपने कहा यह अव्यय योग है, अविनाशी योग है, नाश होने वाला नहीं है, इनएग्जास्टेबल है, और अभी कहते हैं योगो नष्ट परम तप, इसका अर्थ क्या है? श्री प्रभुपाद ने इसका अर्थ लिखा है कि गलत कमेंट्रियों की वजह से जो ओरिजिनल गीता का भाव है वो लोगों से गुम हो गया। गीता का भाष्य लोगों ने कृष्ण के भाव से हटके अपनी इच्छा से किया, और इसका दूसरा अर्थ यह है ऐसे राज ऋषि नहीं रहे जो गीता के भाव को समझ सके। योग नष्ट नहीं हुआ, योग को जानने वाले नष्ट हो गए, योग को जानने वाले नहीं रहे। भगवान ने मानो अर्जुन ने पूछा होगा योग नष्ट कैसे हुआ, तो भगवान ने कहा राज ऋषि नहीं रहे। तो अर्जुन और चिंतित हो गया, अरे तो इसका क्या अर्थ है, हमारे कुल में कोई राज ऋषि नहीं, हम पांडु महाराज था, पुरु महाराज था, कुरु महाराज था, इससे हमारे वंश में कोई राज ऋषि नहीं, हमारे पितामह के नाम से कुरुक्षेत्र नाम हो गया, ये कुरुक्षेत्र का नाम कुरु वंश के पीछे हुआ, ये महाराज कुरु ने सोने के हल से और अपने रथ से सिंचाई की थी इस भूमि की, और इस भूमि में वरदान दिया था कि मेरे नाम से इस भूमि का नाम हो, और जहां जो यहां प्राण त्यागेगा उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, सतमार्ग के ऊपर जाएगा। कुरु महाराज को भगवान ने प्रार्थना वरदान दिया था, तब से इसका नाम कुरुक्षेत्र हो गया। तो हमारे पास कोई राज ऋषि नहीं है। अर्जुन को बहुत मानो उस वक्त अर्जुन का चेहरा ऐसे हो गया,
हमारे कुल में कोई राजऋषि नहीं रहा, युग नष्ट होगा। तब भगवान तीसरे श्लोक में कहते स एव मयाते अद्य योग प्रोक्त पुरातना। स वही योग जो मैंने सूर्य को दिया, मया मेरे द्वारा, ते तुमको अद्य आज मैं वही योग तुमको देता हूं। अर्जुन अभी ऐसे दुखता है, तो अभी मैं राजऋषि हो गया। थोड़ी देर के लिए अर्जुन बस, पहले तो उसको परेशान हो गया कि कोई हमारे कुल में कोई राजऋषि नहीं, नोबडी वाज राजऋषि इन अवर लीनियज, दिस इज टू बैड फॉर अस। लेकिन जब भगवान ने कहा समयाते अद्य योग प्रोक्त पुरातन, वही पुरातन, पुरातन मतलब दैट ओल्ड योग सिस्टम जो मैंने दिया था विवस्वान को, आज मैं तुमको देता हूं। आप अर्जुन बोलते हैं क्या है मुझ में, भक्तोसी में सखा चेती रहस्य मई तद उत्तमम, तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए तुम इस रहस्य को समझ सकते हो, इस रहस्य को तुम समझ। अब ये जो भक्त भगवान ने कह दिया अर्जुन को, ये अर्जुन को भगवान ने भक्त कहा है। अर्जुन नहीं कहता है सीना पे मैं भक्त हूं, मैं भक्त, ऐसा नहीं कर, हम तो कहते हैं हम भक्त हैं हम आप, लेकिन अर्जुन को भगवान ने कहा कि भक्त हो, ये बहुत विशेष बात है कि भगवान ने उसको टाइटल दिया कि भक्तों सी में सखा चेती, तुम मेरे सखा और मेरे भक्त हो। अब अर्जुन ने कहा मुझे भगवान ने भक्त कहा तो मैं कृष्ण का भक्त हूं ना, अब तो ये पूछ लेना चाहिए ना कि कृष्ण आपकी उपासना करता हूं ये ठीक है या निराकार ब्रह्म वाले है वो ठीक है, दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है उपासना वो तो बताओ। अर्जुन अपना डाउट को क्लियर करना चाहता है, प्रभुपाद भावार्थ में लिखा है अर्जुन वांट टू क्लियर हिज ओन पोजिशन कि मेरी की स्थिति क्या है, मैं तो आपका भक्त हूं, मैं तो निराकार को नहीं जानता। जैसे भगवान के भक्तों की श्रेणी में जहां सनातन गोस्वामी लिखते हैं ब्रज भागवत अमृत में भक्तों की श्रेणी, तो दुनिया के भक्तों से लेते हैं कि दुनिया में ऐसे भक्त हैं, और फिर देवलोक के भक्तों की बात करते हैं, हनुमान की बात आती है, अर्जुन की बात आती है, शंकर जी की बात, इंद्र की बात आती है, शंकर की बात आती है, और भगवान शंकर के बाद उद्धव को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। उद्धव के पास जाते तो वो रो के कहता है अरे मैं कहां सर्वश्रेष्ठ, मुझे कहां साथ ले गए, मुझे तो छोड़ के चले गए, गोपियों से ज्यादा कोई भक्त भगवान का परम है ही नहीं। तो ये जो परिभाषा भक्ति की, ये सीढ़ी ऊपर इतनी बताई गई है सनातन गोस्वामी के द्वारा, तो ये भक्ति की महिमा इतनी है, तो उसको समझना चाहिए कि भक्त जो उपासना कर रहे हैं। तो मैं बात ये कर रहा था वो गोपियों को जब कहा उद्धव ने कि भगवान में मन लगाओ, बोला दूसरा मन कहां से लाए, एक ही मन था वो कृष्ण लेके चला गया, अब दूसरा लाए कहां से जो तुम्हारे वाले ब्रह्म में लगाए, तुम कहते हो ब्रह्म में मन लगाओ ना, मन है ही नहीं, वो तो पहले ही लेके गया, दूसरा होता तो लगाते ना। तो बोला फिर तुम ये आंखें बंद करे ध्यान किस चीज का करते हो, बोला हम ध्यान करते हैं कृष्ण को थोड़ी देर दिल से निकल जाए तब घर का काम कर ले, लोग ध्यान करते हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में थोड़ी देर के लिए आए, और गोपियां कहती है थोड़ी देर के लिए हमारे दिल से निकले ताकि हम घर का काम कर ले। एक बार कृष्ण तो चले गए थे मथुरा, गोपियां पानी भरने के लिए गई तो बच्चा एक छोटा सा गोद में ले गई थी पानी भरने, तो सामने ऐसे अचानक देखती है तो कदम का पेड़ दिखता है, उसको ऐसे देख रही है। अब वो जो बर्तन ले गई थी पानी भरने उसमें रस्सी डाल के कुएं में डालना चाहिए था, वो रस्सी बच्चे के गले में डाल के कुएं में डाल रही है। किसी ने बोला ये क्या कर रही है, बोला कृष्ण कदम के पेड़ पे बांसुरी बजा रहा है ना, वो इतनी तन्मय थी कृष्ण के दर्शन में कि उसको ये पता नहीं कि वो मटके में बांध रही है रस्सी के अपने बच्चे के गले में बांध रही है, वो बच्चे के गले डाल के नीचे डाल रही थी, किसी ने हाथ से आके पकड़ा। तो इसको बोले इतना मन आविष्ट कृष्ण में होता था कि दुनिया में सबसे प्रेम हम करते हैं अपने बच्चे से, वो बच्चा भी उसको पता नहीं कि है कहां इस वक्त, ये प्रेम की परिकाष्ठा है। तो ये प्रश्न अर्जुन का बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण आपकी श्याम सुंदर रूप में नित्य निरंतर सब जगह हर समय आपकी उपासना करें अथवा निराकार ब्रह्म का चिंतन करें, इन दोनों उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ कौन सी है। और भगवान ने उत्तर क्या दिया, श्री भगवान वाच मई आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परिपेतास्ते में युक्तत्म मत। भगवान ने निर्णय दे दिया, युक्तत्म मत, ये मेरा मत है, ये कृष्ण का मत है। और कृष्ण का मत कैसा होता है? तीसरे अध्याय में कृष्ण बोलता है ये मैं मतम इदम नित्यम, ये मेरा मत नित्य है, ये मैं मतम इदम नित्यम, मेरा मत नित्य है, इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कल मैं बोलूंगा पहले मैंने कहा उसको मैं रद्द करता हूं अब नया कानून मैं लाऊं, नहीं, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। ये मैं मतम नित्यम किसके लिए? अनुतिष्ठंती मानवाहा, ये पूरी मानव जाति के लिए, ये मेरा मत नित्य है। कृष्ण का मत चेंजेबल नहीं है, आज ये मत है कल मैं बदल दूंगा मत, पहले जो कहा था उन सब रद्द हो गए, आज से मेरा कानून चलेगा, नहीं। कृष्ण कहता ये मैं मतम इदम नित्यम, और किसके लिए? अनुतिष्ठंती मानवाः, मानव जाति के लिए, जो अपने आप को मानव कहता है उन सब के लिए ये मेरा मत है, ये सर्वजनिक है, सब लोगों के लिए है, ये सर्वकालीन है, सब काल के लिए, और ये सार्वभौमिक है, ये सब जगहों के लिए, ये पूरी पृथ्वी के लिए रहने वाले मानवों के लिए नहीं है, ब्रह्मांड में रहने वाले सब जीवों के लिए है विशेष रूप के। ये मैं मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, उधर भी भगवान ने कहा श्रद्धयावंतो अनसूयन्तो, लेकिन इसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धयावंतो, श्रद्धावान होना चाहिए। और यहां भी भगवान कहते हैं इस मेरी मत के ऊपर श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट, जीवन में है श्रद्धा, श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण जीवन में। आदौ श्रद्धा अथ साधु संग, रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति शुरू ही श्रद्धा से होती है। आदौ श्रद्धा, पहले श्रद्धा चाहिए, जब श्रद्धा हमारी भगवान के ऊपर होगी तो भगवान रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे? साधु संग, भगवान साधु का संग देंगे, और साधु क्या करेगा? भजन क्रिया, साधु हमको भगवान का भजन करने का, नाम जपने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भजन करने की शिक्षा देगा, और तब होगा अनर्थ निवृत्ति। भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे, जैसे सूर्य उगता है अंधेरा चला जाता है अपने आप, ऐसे भगवान का नाम लेने से सब बुराइयां अपने आप चली जाएंगी, रह नहीं सकती वह। और ये बड़ा एक प्रयोग करके, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड में करके देखा, ये थ्योरिटिकल नहीं है, ये वर्ल्ड में लाखों लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है, प्रयोग किया गया है कि हरे कृष्णा जपने से उन लोगों की सब बुरी आदतें अपने आप छूट गई, शराब छूट गया, सिगरेट छूट गया, तमाकू छूट गया, मांस छूट गया, उन लोगों ने छूटने का प्रयास नहीं किया, दे डिड नॉट ट्राई टू गिव ऑल दिस थिंग अप, बट दे कुड नॉट स्टे टुगेदर, नहीं वो रह नहीं सकती, वो रह ही नहीं सकती। ये बहुत बड़ा प्रयोग किया है, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया वर्ल्ड में, सिंपली यू स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ जितने हैं सब अपने आप निवृत्त, उस भाग जाएंगे, रहेंगे नहीं वहां, और जब नहीं रहेंगे तो आपकी निष्ठा हो जाएगी, तथा निष्ठा, निष्ठा क्या हो जाएगी? और इतना सारा खर्च होता था बोतल शराब की रोज की लाने के लिए 200 रुपया लगता, अब छूट गई 200 रुपया तो बच गया, चाय के लिए घर के अंदर इतना खर्चा होता था, बच्चों को दूध पीने के लिए नहीं मिलता था, पत्ती डालने से काला कर देते थे, अब वो छूट गया, बड़ा फायदा हो गया, तो निष्ठा बढ़ेगी ना भक्ति की, आदमी को जो फाइनेंशियल लाभ होगा, हेल्थ का लाभ हो गया, स्पिरिचुअल लाभ तो बाद की बात है, लेकिन ये तो आंखों के देखा लाभ है ना, बाहर के लोगों को अच्छी तरह से देखो, दो टाइम की रोटी का पैसा सबके पास है, लेकिन एक्स्ट्रा खर्चा किस चीजों के ऊपर है? वो एक्स्ट्रा खर्चा जो जिन चीजों के ऊपर है वो सब अपने आप छूट जाता है, तो उसकी निष्ठा बढ़ती है, ये बहुत अच्छा काम है, ये काम करना चाहिए, इस काम में लाभ है। अरे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया, और फिर निष्ठा के बाद रुचि, फिर टेस्ट आने लगती है, राम नामे रुचि जीवे दया ए वैष्णव आचार, तब उसमें वैष्णवपन आता है, रुचि आती है तो वैष्णवपन आता है, नाम लेने में बहुत टेस्ट आने लगती है। अभी हमको टेस्ट नहीं आ रही है, अभी हम टेस्ट के स्टेज पे पहुंचे नहीं है, टेस्ट जब आती है तो छोड़ने की इच्छा नहीं करती, और रुचि के बाद आसक्ति होती है, आसक्ति, आसक्ति का अर्थ है उसके बगैर हम रह नहीं सकते, आसक्ति से उर्दू का शब्द इश्क निकला है, फिर इश्क हो जाएगा। और इश्क में सवाय जिससे हम प्रेम करते हैं उसके अलावा और कुछ दिखेगा ही नहीं, और कुछ भी नहीं दिखेगा, जो भी दिखेगा उसमें वही दिखेगा। योमाम पश्यति सर्वत्र, ये आसक्ति वाला सब जगह भगवान को देखेगा। आसक्ति के बाद भाव, और संस्था का नाम है कृष्ण भावना। भाव, भाव तक हमारे को प्रयास करना है, भाव तक हमको जाना है। भाव इज लाइक डॉन जस्ट बिफोर दी सनराइज, सूर्य उगने से पहले जो प्रकाश होता है उसको बोलते हैं भाव। और कृष्ण प्रेम सूर्य उदय है, जस्ट भाव तक पहुंचे तो कृष्ण अपने आप उदय। कृष्ण प्रेम आपको कहीं से लाना नहीं है, बाजार में नहीं मिलता है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कभू नाही, महाप्रभु कहते हैं कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध, कृष्ण प्रेम सदा के लिए हर एक के हृदय में तैयार पड़ा है। सिद्ध किसको मालूम है, कहते हैं सिद्ध, पुराने जमाने में चावल पकाते थे ना, राइस पकाते थे ना माताजी लोग, तो एक राइस निकाल के ऐसे देखती थी कि पक गया कि नहीं पक गया। जब राइस पूरा पका उसको बोला सिद्ध हो गया, राइस भाषा होती है, राइस सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया मतलब पूरा पक गया। और ये भक्ति शब्द जो है ना, ये भक्ति शब्द और भात शब्द दोनों एक ही धातु से निकलते। संस्कृत का धातु भात का और भक्ति का एक ही है, भक्ति और भात बराबर है। भक्त भी सिद्ध हो जाता है, वो उसके अंदर कोई कण की दाना नहीं रहता है। जिस चावल में थोड़ा सा पक्का पूरा नहीं होगा तो खाएगा कोई आदमी, नहीं खाएगा ना। ऐसे भक्त भी बिल्कुल कोमल ऐसा सिद्ध हो जाता है कि उसमें लेस मात्र भी ईर्ष्या और अहंकार नहीं रहता है, तब वो भगवान उसको अंगीकार करते हैं। और भात भी तब खाते हैं जब पूरा पक जाता है, कच्चा भात कोई नहीं खाता है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कभू नहीं, किसी साधन से नहीं प्राप्त होगा, ये तैयार सबके हृदय में पड़ा है। आप सब जितने हम बैठे हैं कृष्ण प्रेम पहले से तैयार अंदर पड़ा है। लेकिन दूसरी लाइन में क्या बताया, शुद्ध चित्ते श्रवण आदि करे होए उदय। लेकिन उदय होने का अर्थ क्या है, सुबह सूर्य को क्या कहते हैं, उदय हुआ। उदय अपने आप सूर्य होते हैं कि आप बुलाने जाते हैं, कोई लोग सूर्य को सुबह बुलाने जाता है कि आ जाओ, नहीं अपने आप होता है ना, सूर्य उदय होता है। कृष्ण प्रेम अपने आप उदय होगा, बाहर निकलेगा। इट विल अराइज कब, जब चित्त शुद्ध होगा, शुद्ध चित्त होगा। चित्त शुद्ध कब होगा, श्रवण आदि करे, जब श्रवण करेंगे, आदि का मतलब श्रवण कीर्तन आदि, जब श्रवण करेंगे तो चित्त शुद्ध होगा, तो कृष्ण प्रेम अपने आप बाहर निकल आएगा। इसका बहुत सिंपल उदाहरण के साथ कथा को समाप्त करते हैं आज की। हैंडपंप देखे हैं आपने हिंदुस्तान में पानी निकालने के, मई जून के अंदर गर्मी इतनी हो जाती है, हैंडपंप चलाने से पानी नहीं आता है, हवा निकलती है, देखा है, क्यों, पानी खत्म नहीं होता है। लेकिन पानी की लेवल और पंप के वाइशर के बीच में वैक्यूम हो जाता है, कितना भी पंप चला हवा निकलेगी, अरे पानी नहीं आ रहा। तो पुराने लोग क्या करते थे मालूम है, क्या करते पुराने, एक बाल्टी लाएंगे, दो बकेट ऊपर से, दो तीन जग ऊपर से डालेंगे तो क्या होगा, फिर पांडल का चलाओगे तो पानी के मटके भर जाएंगे। ऐसे कृष्ण प्रेम तो पड़ा है लेकिन बीच में वैक्यूम हो गया है। कानों के द्वारा कृष्ण कथा के दो चार जग डालेंगे तो कृष्ण प्रेम अपने आप बाहर निकल आएगा। ये श्रवण आदि का अर्थ है, कानों के द्वारा दो चार बाल्टी कथा की डालोगे तो कृष्ण प्रेम अपने आप बाहर निकल आएगा। तो ये श्रवण आदि शुद्ध चित्ते हुए उदय, कृष्ण प्रेम फिर अपने आप उदय हो जाएगा। तो श्रवण सबसे मुख्य अंग है भक्ति का, श्रवण सबसे मुख्य अंग है भक्ति का। और कृष्ण कथा का श्रवण हमारे को नित्य करना चाहिए। श्रवणताम श्रद्धया नित्यम, भागवत लिखती है, नित्य प्रतिदिन श्रद्धा के साथ उत्साह के साथ कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, स्वकथा जो कृष्ण ने कही है भगवत गीता, स्वकथा भगवत गीता है जो स्वयं कृष्ण ने कही है, इसको प्रतिदिन उत्साह के साथ सुनना चाहिए। यह सुनने से कृष्ण प्रेम अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो भगवान कहते, भगवान उत्तर देते, मेरा मत यह है कि जिस भक्त का मन मुझ में आविष्ट है, मैं आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, प्रतिदिन मेरी उपासना करता है। श्रद्धया और श्रद्धा से बिल्कुल संपन्न है, परियोपासते हर जगह मेरी उपासना करता है, ते में युक्तत्मा मतः। इसके ऊपर बाकी शब्दों के ऊपर चर्चा कल करेंगे, लेकिन आज केवल मत के ऊपर बात कर रहे हैं। कृष्ण की मत निश्चित सदा रहने वाली है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री प्रभुपाद की, शिवास पंडित महर्षि की, गौर प्रेमानंदे। एक घंटा दस मिनट ठीक है, रेगुलर जितना होता है उतना ही है, ज्यादा नहीं।